الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو کل جو ہم نے آیات پڑھی تھیں اور ان کے معروف مسائل پڑھنے ہم نے شروع کر دیے تھے، تھوڑا سا اس کے اندر رہتا ہے، تو اس کو پڑھنے سے پہلے ہم کل ہی کے ایک ٹاپک کو جو ہے تھوڑا مزید اس کے اوپر بات کرنی ہے. وہ ٹاپک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 4 کے اندر جو فرمایا نا کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے ان حاذا الا افکن افتراہو، کہ یہ قرآن ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس گھڑے ہوئے جھوٹ کے اوپر جو ان کے ساتھی ہیں، اصحاب ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ ان کی مدد کرتے ہیں اس جھوٹ کو پروپیگیٹ کرنے میں، یہ ساتھی ان کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر نا ہمارے لیے ایک بہت ہی ریلیونٹ ہدایت کا پوائنٹ ہے اس آیت کے اندر، جو کہ ہمارے اس دور پہ اپلائی ہوتا ہے، اس زمانے میں ہمارے اپنے حالات کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ اس میں جانے سے پہلے ایک بات جو ہے وہ یعنی یا جس آپ کے سامنے مزید رکھنا چاہے گا وہ یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں نا ایک اچھا ہاں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ہم کیوں اس میں سے یہ ہدایت لے رہے ہیں، کیونکہ قرآن اصل میں تو قرآن یعنی کتاب ہدایت ہے نا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں ہماری ہدایات کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی روشنی کے اندر اپنی زندگی گزاریں. ٹھیک ہے، یہ صرف جو ہے وہ ایک انٹلیکچولائزیشن کی کتاب نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو کچھ فیکٹس اور فگرز پتہ لگ جائیں اور آپ کی جو ہے نا وہ بس یعنی آپ ایک پڑھے لکھے انسان کہلانا شروع کر دیں کہ ہاں انہوں نے جو ہے نا وہ یہ ایک آسمانی کتاب پڑھی ہے. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، جس کے بارے میں لوگ بہت بڑی تعداد میں لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے. تو ان صاحب نے جو ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ بڑے یعنی ریسرچ کیا ہے اس کتاب کے اندر. ٹھیک ہے، یا اس کتاب کے اندر جو کہانیاں ہیں وہ ان صاحب کو بہت اچھی طریقے سے آتی ہیں، یا یہ کہ اس کتاب کے اندر جو کہانیاں ہیں نا ان کہانیوں کو ہم سیکھ کر کے پھر اپنے بچوں کو سنایا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے تو نہیں نازل کیا گیا نا. ٹھیک ہے، کہانیاں سنانے کے لیے تو نازل نہیں کیا گیا، بچوں کو سلانے کے لیے تو نازل نہیں کیا گیا کہانیاں سنا سنا کر کے. ٹھیک ہے، قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے. تو اس وجہ سے اس میں سے جب تک ہم اپنے دور کے لیے، اپنی زندگی کے لیے ہدایات ڈرائیو نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہنے کے بعد یہ بھی بہت ضروری ہے یاد رکھنا کہ یہ قرآن جو ہے یہ کتاب ہدایت کے ساتھ ساتھ کتاب ثواب بھی ہے، نیکیاں کمانے کے لیے بھی اس کو نازل کیا گیا ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کی جو آپ تلاوت کرتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے، اس کے عربی کی جو تلاوت کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس کلام کے اندر، ان الفاظ کے اندر، تو ان کو پڑھنے سے ہمیں ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں. اور آگے آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم ایک لفظ ہے. یعنی الف لام میم یہ قرآن کے 3 الفاظ کا مجموعہ ہے. تو اس کو پڑھنے کے اوپر اس حدیث کے مطابق کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں ملیں گی. ٹھیک ہے، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. اگر کوئی اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش بھی کرے تو بھی اس کا ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا، رائٹ؟ اس کے مفہوم جو ہیں وہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہی نہیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے، کسی کو بتلائے ہی نہیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے.
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर अलिफ लाम मीम का लफ्ज इस्तेमाल करके ये बात और ज्यादा कंफर्म कर दी कि बगैर समझे हुए पढ़ने के ऊपर नेकियां मिलती हैं। ठीक है, तो कुछ लोग जो है ना इस बात को फैला रहे हैं अनफॉर्चुनेटली मीडिया को इस्तेमाल करके भी, और कुछ लोग जिनको पता नहीं होता कि तफसीलात पता नहीं होती लोगों को, तो उस मीडिया के ऊपर वो सुन लेते हैं किसी ऐसे शख्स को बोलते हुए कि ये कुरान जो है वो सवाब के लिए नाजिल नहीं किया गया है बल्कि ये समझने के लिए और अमल करने के लिए नाजिल किया गया है, राइट। तो अब ये लोग जो है ना ऐसी चीजों को फिर व्हाट्सएप के ऊपर फैलाना भी शुरू कर देते हैं, दूसरों को फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि ये बातें बड़ी चिकनी चपड़ी लगती हैं, बड़ी खुशनुमा लगती हैं। हाँ हाँ कुरान तो किताब हिदायत है, तो सवाब के लिए पढ़ने का फायदा नहीं है। ये कुरान सवाब के लिए नाजिल नहीं किया गया, ये कुरान हिदायत के लिए नाजिल किया गया। ठीक है, तो इस तरह की बातें भी जो है ना वो ऑन एयर चल रही होती हैं और व्हाट्सएप के ऊपर फिर इन चीजों को फॉरवर्ड किया जाता है। तो उससे फिर कंक्लूजन क्या निकाला जाता है कि रमजानुल मुबारक के अंदर तफसीर पढ़ो तो फायदा है, तिलावत करने की क्या जरूरत है। और उसके ऊपर दलीलें भी दी जाती हैं कि अल्लाह ने जो एक यानी किसी ने अपने गुलाम को जो है वो एक मैसेज दिया, तो वो उसने जो है वो उस मैसेज को जो है ना वो पढ़ने और समझने की बजाय जो है वो उसको जो है वो चूमना चाटना शुरू कर दिया और अपने ऊपर रखना शुरू कर दिया। तो पढ़ने यानी इसके अरबी की तिलावत करना भी अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा ये है कि इसको जो है वो आप यानी इसकी तफसीर पढ़ें। ठीक है, और 10 कुरान खत्म कर लेना, जो जो रमजान मुबारक के महीने में 10 कुरान खत्म करने का क्या फायदा है, बल्कि तफसीर पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये भी जो है ना इसके ये भी जो है वो एक तरह से एक जिसको क्या कहते हैं, हमने अपनी पिछली क्लासों के अंदर बहुत इस बात को समझाने की कोशिश करी है कि इसके लिए अरबी जुबान का एक मुहावरा इस्तेमाल होता है, कलिमतुल हक युरीदु बिहिल बातिल, कि कहने वाला जो कलमा कह रहे हैं ना ये तो बड़ा हक वाला कलमा लगता है, बहुत ही जो है वो अच्छा और सही बात रखती है कि हाँ ये कुरान किताब हिदायत है, लेकिन इसके जरिए से जो है ना वो बातिल अचीव करना चाह रहा है, वो एक गलत बात गलत मकसद अचीव करना चाह रहा है कहने वाला है शख्स। ठीक है, तो इन चीजों को समझना जो है ना ये जिस तरीके से ये झूठ के यानी बल्कि कहना चाहिए सच के लिबादे में झूठ को पेश किया जा रहा होता है, ये बहुत मुश्किल होता है समझना अवाम उन्नास के लिए, इसको समझना बहुत मुश्किल काम होता है कि इसके अंदर क्या झूठ छुपा हुआ है, बजाहिर कितनी सच्ची बात कर रहा है ये शख्स कि कुरान किताब हिदायत है और इसको समझने की जरूरत है, राइट, लेकिन असल में इसके पीछे इसने झूठ जो है ना वो छुपाया हुआ है। तो इसको अवाम उन्नास के लिए समझना मुमकिन ही नहीं होता, मुश्किल तो दूर की बात मुमकिन ही नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से ये बात भी याद रखें कि ये कुरान जो है वो किताब सवाब भी है, एक एक लफ्ज को पढ़ने के ऊपर 10-10 नेकियां मिलती हैं और हम नेकियों के मोहताज हैं। हम अपने आप को कभी ये नहीं कह सकते कि जी मुझे जो है वो अहकाम को समझने की जरूरत है, मुझे नेकियों की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे नेकियों की भी जरूरत है, मुझे सवाब कमाने की भी जरूरत है और मुझे अहकाम पर अमल करने की भी जरूरत है। ठीक है, तो इस अच्छा दूसरी बात ये कि ये जो इस तरह की बातें की जाती है ना, तो इनको इन बातों को करने वाले कौन होते हैं, इनको करने वाले जो होते हैं ना ये उलमाए हक में से नहीं होते हैं, ये उलमाए सू होते हैं जिनको कि अहले बिदत कहा जाता है। अहले बिदत लोग जो है ना वो इस तरह की बातें जो है वो अवाम उन्नास के सामने पेश करते हैं ताकि अवाम जो है ना उनकी बातों से बहुत इम्प्रेस हो जाए और इम्प्रेस होने के साथ वो सिर्फ उनका मैसेज जो है वो अडॉप्ट ना करें बल्कि मैसेज कम्युनिकेट करने वाले को भी अडॉप्ट करें। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर एक मकसद नहीं होता कि लोग जो है वो टाइप आ जाएं, लोग जो है वो सही काम करना शुरू हो जाएं, बल्कि इसके अंदर एक और भी मकसद होता है कि जो लोग मैसेज दे रहे हैं ना तो उस मैसेज को कम्युनिकेट करने वाले को भी अडॉप्ट करें, उसके बारे में भी जो है वो बहुत अच्छा ओपिनियन बनाना शुरू कर दें। ठीक है ना, उनको अच्छा समझना शुरू कर दें, हालांकि असल में वो लोग जो हैं वो दीन को दुनिया के बदले बेचने वाले लोग हैं, अहले बिदत हैं, राइट, और यानी बहुत ही जो जो यानी मुशरिकाना किस्म की हरकतें होती हैं उस किस्म की हरकतें करने वाले लोग हैं, लेकिन ऊपर से टीवी चैनल के ऊपर आकर के ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो बहुत इंप्रेस हो जाए उनकी बातों से। हाँ हाँ कुरान तो किताब हिदायत है। ठीक है, तो इस तरीके से ना वो अपने झूठ झूठ को अपनी बिदत वाली जिंदगी को अपनी जो है वो दुनिया परस्ती वाली जिंदगी को जो है वो इन अच्छी अच्छी बातों के अंदर लपेट करके लोगों के सामने पेश कर रहे होते हैं और लोग जो है वो उससे इंप्रेस हो जाते हैं। और फिर उसको व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। किन चीजों को ना, पहली बात ये कि आपको नहीं पता कि ये शख्स जो है वो कौन है, आप उसके आगे पीछे से वाकिफ नहीं है, आप उसके असल जिंदगी से वाकिफ नहीं है, आप किस बेसिस पर उससे उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, ना तो आप उसको जानते हैं ना उसके किसी जानने वाले को जानते हैं कि जो उसकी जिंदगी को अच्छी तरीके से जानते हैं, ना आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं। तो ऐसी जो है वो बातों की बुनियाद पर जो है ना वो चीजों को जो है वो एडॉप्ट कर लेना और उनको फिर आगे लोगों को जो है वो यानी फॉरवर्ड करना शुरू कर देना, ये बहुत बड़ी गलती है इस दौर की जो कि हम कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती है। हमें ये ना दीनी मामलात में ऐसा करना है और ना ही दुनियावी मामलात में ऐसा करना है, ये भी याद रखें। सिर्फ दीनी मामलात के अंदर मना नहीं किया जा रहा, दीनी मामलात के अंदर तो फिर भी लोगों को समझ में आ रही है ये बात कि ऐसी चीजों को जो है ना वो फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे बेचारे भोले भाले होते हैं, उनको फिर भी समझ में नहीं आती ये वाली बात है, ठीक है, तो वो फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, जो उनके पास आता है ना, जिसको वो बड़ा खुशनुमा लगता है, उनको आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को ना अब दीनी मामलात के अंदर ये बात समझ में आनी शुरू हो गई है कि भाई हर चीज को जो है वो फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, पहले सोर्सेज को वेरीफाई करना जरूरी है, ठीक है, सोर्सेज को वेरीफाई करना जरूरी है, फिर जाकर के आप इसको फॉरवर्ड करें अगर बहुत समझते हैं कि उसका फायदा होगा किसी को फॉरवर्ड करने से। लेकिन ये तो हम उस जमाने में दाखिल हो चुके हैं जिसके अंदर के दुनियावी मामलात को भी जो है ना वो वेरीफाई, बहुत ज्यादा वेरीफाई करने की जरूरत पड़नी शुरू हो गई है। हम दुनियावी मामलात में भी जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स कहलाते हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, हम उनकी बात को भी जो है ना वो 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, इवन दुनियावी मामलात के अंदर। उसकी तफसील में अभी मैं नहीं जाऊंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने कोई और बहाना था फरमाया तो बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात ये हो रही थी कि कुरान किताब हिदायत है, किताब सवाब होने के साथ साथ किताब हिदायत है, ठीक है। तो हम इस आयत के अंदर से अपने लिए क्या हिदायत देते हैं, वो ये है कि जैसे कल भी आप लोगों को बताया था कि ये जो काफिर होते थे ना मक्का मुकरमा के अंदर, इन्होंने इसाले सवाब का जो सवाल पूछ दिया बीच में, तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं इसाले सवाब, ठीक है, बस इतनी बात खत्म हो गई। आगे चले कि ये जो कल बताया था कि ये जो काफिर होते थे मक्का मुकरमा के अंदर, ये मुशरिकीन, ये खुदा का इनकार नहीं करते थे, खुदा के मुनकिर नहीं थे, ये एथियस्ट नहीं थे, जिसको जैसा कि हम एथियस्ट लफ्ज को समझते हैं कि खुदा का इनकार करने वाला कि जी बस ये दुनिया खुद ब खुद बन गई है, ठीक है। वैसे तो एथियस्ट अब ऐसे है नहीं, एथियस्ट भी जो है ना ये भी ट्रांसफॉर्म हो गए, ठीक है, एथियस्ट भी ट्रांसफॉर्म हो गए, ये अब वैसे एथियस्ट नहीं है जैसे डार्विन के दौर में हुआ करते थे या डार्विन की बेसिस पर जो खुदा की नफी करते थे, अब एथियस्ट वैसे एथियस्ट नहीं है। बहरहाल तो ये खुदा का इनकार नहीं करते थे, तो फिर ये किस चीज का इनकार करते थे, ठीक है, आपसे पूछूंगा तो फिर बहुत लंबा चल जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह सबको पता ही होगा इसका जवाब कि ये जो है ये नबी अलैहिस्सलाम का इनकार करते थे। क्या मतलब नबी अलैहिस्सलाम का इनकार करते थे, ये कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें अल्लाह से मंसूब कर रहे हैं ये असल में अल्लाह की बताई हुई बातें नहीं है, राइट, जो अल्लाह से मंसूब कर रहे हैं इन बातों को, यानी जिसको कुरान कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये कुरान है, ठीक है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि ये इफ्कुन इफ्तराहु है, ये झूठ है जो कि इन्होंने गढ़ दिया है, ठीक है। तो अब ये चीज हमारे लिए कैसे अप्लाई होती है, ये ऐसे अप्लाई होती है कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं कि जी ये शरीयत का जो हुक्म है, ठीक है, तो इस शरीयत के हुक्म को जो यानी जो ये हुक्म है ना, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है, व्हाई, क्यों ऐसा हुक्म है, तो लॉजिक का सवाल करते हैं। तो अब इस के बुनियाद इसके ये जो 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 ये एक एतराज करने वाले लोग होते हैं ना कि जो लॉजिक पूछते हैं, तो इसके ऊपर हमारे उलमाए कराम अकाबरीन ने एक जवाब, ठीक है, सिर्फ एक जवाब का मैं जिक्र कर रहा हूँ जो उन्होंने दिया है इसका, वो क्या दिया है कि जो ये पूछते हैं कि शरीयत के इस हुक्म के अंदर लॉजिक क्या है, ठीक है, तो उनको इस मिसाल से बात समझाते हैं कि भाई किसी को आपने अपना नौकर रखा घर में, उसको आप तनख्वाह देते हैं काम करने के लिए, ठीक है, तो आप अगर उससे कहें कि जी जा करके ना आप बाजार से इतना जो है वो सामान लेकर के आ जाए, 10 किलो गोश्त लेकर के आ जाए, ठीक है, मौलाना तौसीफ़ उस्मानी साहब के मैं एक एक्चुअली कोट कर रहा हूँ बयान को, ठीक है, जो कि कल एक भाई ने भेजा था मुझे सवाल पूछने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने इसका एक जवाब दिया, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन जवाब दिया। वो क्या जवाब था कि भाई कोई आपने नौकर रखा और उसको आप ये कहें कि 10 किलो गोश्त लेकर के आओ, घर में मियाँ बीवी दो दो अफराद रहते हैं, तो नौकर आपसे ये जवाब ये सवाल करे कि 10 किलो गोश्त की क्या लॉजिक है, आप तो सिर्फ दो लोग हैं घर के अंदर, ठीक है, तो आपके लिए तो आधा किलो गोश्त भी काफी होगा, तो पहले आप मुझे कंफर्म करें कि 10 किलो गोश्त जो है ना, इट इज जस्टिफाइड फॉर यू टू बाय फ्रॉम द मार्केट, राइट। तो आप क्या करेंगे उस नौकर के साथ, आप उसको जस्टिफिकेशन देंगे या आप जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, बल्कि आप उसको फायरिंग लेटर देंगे कि यू आर फायर्ड, तुम्हारे जैसा नौकर मुझे नहीं चाहिए, भाई मैं मालिक हूं कि तुम मालिक हो, मैं अपना तुम्हें पैसे दे रहा हूँ कि मैं तुमसे पैसा उधार ले रहा हूँ, तुमसे मैं कुछ पैसे मांग रहा हूँ कि 10 किलो गोश्त के लिए मुझे पैसे दे देना, तुम मुझसे तुम लॉजिक पूछ रहे हो, राइट, तो तुम तो जाओ इधर से भाई, तुम मुझे तो कोई और नौकर चाहिए फिर, है ना, ऐसे ही है ना। तो खुदा के हुक्म के ऊपर लॉजिक का पूछना, तो ये तो यानी एक ईमान वाले के लिए, एक मुसलमान के लिए तो इसका कोई तुक ही नहीं बनता, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता इसका, राइट। बात समझ आ रही है, ठीक है ना, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। हजरत ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया, लेकिन इस जवाब के ऊपर एक दूसरा मसला है। वो क्या मसला है आप अगर बता दें, आपसे पूछते हैं इंटरैक्टिव क्लास करने के खातिर, कि इस जवाब के ऊपर एक एतराज जिसका ताल्लुक इस आयत के साथ है, क्या है वो एतराज जो कि मोतरजीन इस जवाब के ऊपर करेंगे, क्या है वो एतराज, बात समझ आई, कि अल्लाह के हुक्म में लॉजिक तलाश करना, ठीक है। तो ये तो हमने समझा दिया हमारे अकाबरीन ने इस एग्जाम्पल के जरिए से कि भाई अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह ताला खालिक है, मालिक है, अल्लाह के हुक्म के अंदर लॉजिक सवाल पूछने का तो कोई दुख ही नहीं बनता। हम हमारे लिए जो कि हम अब्द हैं, हम तो गुलाम हैं, और इसके ऊपर भी तफसील से हम बात कर चुके हैं, अब्द क्या चीज होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर एतराज क्या होगा कि ये जवाब जो है ना, ये सफिशियंट जवाब नहीं है आज के दौर के अंदर, जो खुसूसन जो ट्रेंड चल रहा है, तो उस ट्रेंड के मुताबिक ये जवाब सफिशियंट नहीं बनता, ठीक है। क्या है कि ये उलमा ने बताया है, अल्लाह ने नहीं बताया, ये एतराज होता है जी, बिल्कुल ठीक है। इस आयत में क्या लिखा हुआ है कि ये जो काफिर है ना, ये नबी अलैहिस्सलाम को ये कहते हैं कि ये जो तुम कुरान लेकर के आए हो ना, ये तुमने घड़ा है, ये अल्लाह की तरफ से है ही नहीं, अगर ये अल्लाह की तरफ से होता तो हमें क्या एतराज था इसके ऊपर, हम तो अल्लाह ताला को अपना खुदा मानते हैं। ये लोग अल्लाह ताला को ओपनली राजिक मानते थे, राइट, अल्लाह ताला को खालिक भी मानते थे, तो अल्लाह ताला की तरफ से अगर प्रूफ कर दो कि हाँ ये वाकई अल्लाह की तरफ से है, तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। हमारा तो सारा ही है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते, हम तुम्हें अल्लाह का रसूल ही नहीं मानते, तो हम तुम्हारी बात को कैसे माने कि ये तुम अल्लाह की तरफ से लेकर के आ रहे हो, तुम तो झूठ गढ़ रहे हो। बिल्कुल यही एतराज आज के दौर के अंदर जो मुल्हिदीन हो जाते हैं ना, इल्हाद का शिकार हो जाते हैं, राइट, ऊपर से मुसलमान कहते भी हैं अपने आप को, समझते भी हैं अपने आप को, राइट, और हर वक्त माशाल्लाह अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मर्जी अल्लाह का फैसला अल्लाह 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 का जुबान पे जिक्र भी जारी रहता है, राइट। और रमजान मुबारक में जो है वो स्पेशल ट्रांसमिशन भी आ रही होती हैं, रमजान मुबारक का क्या ताल्लुक है काफिर के साथ, राइट, काफिर का रमजान मुबारक की ट्रांसमिशन से क्या ताल्लुक, भाई रमजान मुबारक में जो स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आएगा वो वही लेकर के आएगा ना जो कि इस्लाम से अपना ताल्लुक रखता है, समझता है कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, रमजान मुबारक जो है वो स्पेशल मंथ है तो इसमें स्पेशल ट्रांसमिशन होनी चाहिए, राइट। तो रमजान मुबारक की ट्रांसमिशन के अंदर वो सर पे दुपट्टा भी पहन करके आएंगी, है ना, और वो जो है वो जो दूसरे पे साहब होंगे वो शायद टोपी भी पहन लें अपने सर के ऊपर, या इस दफा जो है वो पैंट शर्ट के बजाय जो है वो शलवार कुर्ता पहन करके आ जाए, राइट, और फिर जो है वो उस रमजान ट्रांसमिशन के अंदर जो है वो कुरान की तिलावत भी करवा रहे हों और नबी अलैहिस्सलाम की नात मुबारक भी पढ़वा रहे हो, है ना। तो ये सारे काम कौन करेगा, ये एक मुसलमान करेगा ना जो कि अपने आप को मुसलमान समझता है, ठीक है। लेकिन ऐसे शख्स का मसला क्या है, ऐसे शख्स का मसला जो है ना वो अल्लाह के साथ नहीं है, वो ये नहीं कहता कि मैं इस्लाम को नहीं मानता, वो وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، بلکہ وہ تو رسول کو بھی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ اس کا کیا ہے؟ یہ علماء کو نہیں مانتا، یہ علماء کی بات نہیں مانتا. یہ علماء کو کہتا ہے کہ ان لوگوں نے افکن افتراہو، یہ جو اپنا دین بنایا ہوا ہے نا کہ جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی پردہ کرنا چاہیے عورتوں کو، اس کے اندر کہتے ہیں کہ جی عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے اور مردوں کو جو ہے وہ شریعت سنت کے مطابق رہنا چاہیے، عورتوں کو الگ جو ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعت و سنت بنائی ہے اس کے مطابق رہنا چاہیے، اور جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ موسیقی حرام ہے، دین کے اندر موسیقی حرام ہے، دین کے اندر فلانا چیز حرام ہے، دین کے اندر فلانا چیز مکروہ تحریمی ہے، ایسا یہ ساری پابندیاں دین کے اندر. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں ان مولویوں کی گھڑی ہوئی پابندیاں ہیں، یہ ان کا گھڑا ہوا دین ہے، یہ اصل دین کوئی تھوڑی ہے، اصل دین کوئی تھوڑی ہے یہ، رائٹ. تو کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا افکن افتراہ، یہی الفاظ کہتے ہیں نا، عربی میں اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ ان ھذا الا، یہ جو ساری باتیں یہ مولوی لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے سوائے افکن، جھوٹ افتراہ، جو مولویوں نے گھڑ لیا ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور ان مولویوں کی جو اتباع کرنے والے لوگ ہیں، رائٹ، جو ان کے دوست احباب ہیں جیسے تبلیغی جماعت والے، رائٹ، ان کے جو مدرسوں کے اندر پڑھنے والے لوگ ہیں یا ان مدرسوں کی جو اعانت کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان مولویوں کی حامی حاملاتے ہیں، یہ ان مولویوں کی اعانت کرتے ہیں اس گھڑے ہوئے دین کے اندر، رائٹ. تو کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ یہاں پر بھی ایگزیکٹلی یہ مسئلہ ہے، مسئلہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، رائٹ، مسئلہ جو ہے نا وہ میڈیم آف ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے، میڈیم آف ٹرانسمیشن. ان لوگوں کے سامنے میڈیم آف ٹرانسمیشن کون تھا؟ اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان لوگوں کے سامنے. ہمارے سامنے کون ہے میڈیم آف ٹرانسمیشن؟ وہ اللہ کے رسول کے ورثاء ہیں، ان کے انہیریٹرز، العلماء. تو ہم نے پھر جو ہمارے سامنے میڈیم آف ٹرانسمیشن ہے ہم نے ان کو جھوٹا قرار دینا ہے؟ ہم نے اللہ کے رسول کو جھوٹا قرار دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے ہمیں، وہ تو چلے گئے دنیا سے، وہ تو پردہ فرما گئے، وہ تو روضہ رسول کے اندر موجود ہیں، رائٹ. وہ آ کر کے ہمیں کوئی تھوڑی احکام بتانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو حاضر اور ناظر کو تھوڑی بنایا ہے کیا حاضر اور ناظر یہ عقیدہ کسی کا یہاں پر، رائٹ، کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ خود آ کر کے احکام ہمیں بتاتے ہیں، خود ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آپ رمضان ٹرانسمیشن نہیں کر سکتے. کیا کیا خیال ہے آپ کا؟ کسی کا عقیدہ ایسا، رائٹ. تو اللہ کے رسول نے تو آ کے یہ نہیں بتانی ہے نا یہ ساری باتیں، ٹھیک ہے. اس وقت تو جو اس دور کے علماء کرام ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا انکار کرنے والا وہی کافر کہلائے گا نا، وہی جو ہے وہ ملحد. اس کے لیے کافر کا لفظ استعمال نہیں کریں، ملحد کا لفظ استعمال کریں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے وہ خدا پر اعتراض والا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ جو ہے یہ علماء کرام کے اوپر اعتراض کرنے والا مسئلہ ہے. اور اس دور کا جو کفر ہے نا، جو کہ جو مسلمانوں کے درمیان، رائٹ، یہ وہ ایتھیزم والا کفر نہیں ہے. ہاں ایتھیزم والا کفر بھی موجود ہے، اس کے لیے اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ دنیا جہاں کے اندر عمل کرتے ہیں ایتھیزم کے اوپر بھی، لیکن ہمارے ملکوں کے اندر، انڈیا اور پاکستان کے اندر جو ہے نا جو لوگ پائے جاتے ہیں، یہاں پر ایتھیزم والا مسئلہ پریڈومیننٹ نہیں ہے، یہاں پر الحاد والا مسئلہ پریڈومیننٹ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ علماء سے بغض، علماء سے عداوت والا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر علماء کے بارے میں مزید بہت ساری باتیں آ رہی ہیں کہ پیج نمبر 461 کے اوپر جو ہم معروف و مسائل میں سے پڑھ رہے تھے کہ یہ جو کافر ہیں یہ دوسرا اعتراض کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا اعتراض ان کا یہی تھا نا، پہلا اعتراض کیا تھا؟ کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے. تو اس کے پھر جواب میں کیا فرمایا تھا کہ جی یہ جو ہے نا یہ تو یعنی سر السماوات والارض کا ہے، رائٹ، کہ جو کہ زمین و آسمان کے رازوں کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کا جواب قرآن نے جو ہے وہ اعجاز کی شکل میں دیا کہ بھئی قرآن کی عربی کو تم دیکھ لو، باقی جو دوسرے جو اس کے اندر ایسی باتیں آتی ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ نہیں یہ پروردگار کا، یہ خالق کا ہی کلام ہے، ٹھیک ہے. اور اس کلام کو لانے والے جو ہیں وہ خالق اور رازق کے ہی رسول ہیں، ٹھیک ہے. یہ پہلا اعتراض डन हो गया। ओके अब जो है वो दूसरा एतराज। अच्छा पहले एतराज में ना एक सवाल आपसे करते हैं क्विज के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग क्लास क्विज के। वैसे बात हम आपको बता चुके हैं, बस वही क्विज ले रहे हैं कि ये जो बात है कि यानी जो आज के दौर के अंदर उलमा के ऊपर यानी एतराज ना करना, उलमा जो अहकाम बता रहे हैं तो उन अहकाम को मान लेना, ठीक है, तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है, किस बेस की जरूरत है उलमा की बात मानने के लिए, किस बेस यानी क्या चीज चाहिए होती है इसके लिए। जी लव्स है उसके लिए, मर्दों ने तो बिल्कुल सही जवाब दे दिए माशाल्लाह, औरतों की तरफ से भी बिल्कुल सही जवाब आया है, एतमाद। एतमाद इज द बेस जिसके ऊपर सारी की सारी फाउंडेशन खड़ी होती है, ठीक है। अगर ये एतमाद की बेस नहीं है तो फिर फाउंडेशन जो है ना वो है नहीं, या खड़ी होगी तो ढा जाएगी, ठह जाएगी ये फाउंडेशन, ठीक है, ये बहुत ही कच्ची फाउंडेशन है अगर एतमाद की बेस नहीं है। अच्छा अब इसके ऊपर अगला सवाल ये होता है कि जी ये एतमाद जो है वो आए कैसे, आएगा कहां से, ये कैसे आएगा ये एतमाद, अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके ऊपर सारी की सारी चीजें बनती हैं, सारी की सारी इमारत दीन की इसके ऊपर खड़ी होती है, तो फिर ये एतमाद आए कैसे, निस्बत के जरिए से आए, नहीं निस्बत ये जवाब सही नहीं आपका। जी माशाल्लाह दोनों तरफ बिल्कुल सही जवाब आ गए हैं, सोहबत के जरिए से, जुड़ने के जरिए से, जुड़ेंगे तो जानेंगे। बहुत सालों पहले किसी मोबाइल कंपनी ने पाकिस्तान को कराची के अंदर एक बिलबोर्ड लगाया था कि भाई हम आपको इतने अच्छे अच्छे फीचर्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाकी सारे भी बड़े अच्छे अच्छे फीचर्स ऑफर करते हैं, हर मोबाइल कंपनी, जोंग भी जो है वो अच्छे फीचर ऑफर कर रही है, और पता नहीं कौन कौन से सारे नाम है, इंस्टाफोन आई डोंट नो, तो सब अच्छे अच्छे फीचर ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हमारे फीचर्स को अगर सही मानों में आपने अप्रिशिएट करना है ना, तो उसके लिए उन्होंने बिलबोर्ड के ऊपर एक बड़ा सा फकरा लगाया था, कराची वाले जानते हैं, ये उर्दू साइंस कॉलेज यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, वहां मैंने देखा था, ठीक है, क्या लिखा हुआ था, क्या, जुड़ोगे तो जानोगे, जुड़ोगे तो जानोगे, बगैर जुड़े जान ही नहीं सकते, क्योंकि इतने सारे फीचर्स हैं और ऐसे जो है ना उसको तुम्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जब तक तुम एक्सप्लोर नहीं करोगे तुम्हें हमारे फीचर्स का पता ही नहीं चलेगा, तो दूर बैठ करके तो तुम नहीं अप्रिशिएट कर सकते। तो इसी तरीके से उलमाए हक कौन है, उलमाए हक की क्या खास बात है, किस बुनियाद पर उन पर एतमाद करना है, जुड़े बगैर जान ही नहीं सकते, और जुड़ने को ही जो है वो सोहबत इख्तियार करना कहते हैं, ठीक है। तो तमाशा देख करके ना स्क्रीन के ऊपर ये इससे फिर फीचर्स पता नहीं लगते खाली, ठीक है, तो उसके लिए तो जुड़ना पड़ता है, उसके लिए फिर जरा टाइम भी निकालना पड़ता है, और उसके लिए फिर अपनी जरा सोचों को भी इस टाइप इस डायरेक्शन में लगाना पड़ता है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम जो है वो आकर के मजलिस में बैठ तो जाए लेकिन हमारी सोचें जो है वो कहीं और हो, तो ऐसे मजलिस में आके बैठने का क्या फायदा, तफसीर क्लास में बैठने का क्या फायदा, है ना, ऑनलाइन बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी जुड़ तो सकते हैं ना, गौर तो कर सकते हैं ना कि क्या बातें समझाई जा रही हैं, राइट, तफक्कर तो कर सकते हैं उनके ऊपर, अगर तफक्कर करेंगे, सोचेंगे, अपनी सोचों को इस तरफ लगाएंगे, अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपनी जो है वो यानी थॉट प्रोसेस को इस तरफ डेडिकेट करेंगे तब जुड़ सकेंगे, खाली क्लास को जो है ना वो प्ले कर देने से तो नहीं जुड़ सकता ना कोई, ठीक है। तो जब तक जुड़ेंगे नहीं उस वक्त तक एतमाद नहीं होगा, जब तक एतमाद नहीं हासिल होगा उस वक्त तक ईमान उसके ऊपर बिल्ड नहीं हो सकेगा, जब तक ईमान बिल्ड नहीं हो सकेगा तो उस वक्त तक आमाल कैसे बिल्ड होंगे, कैसे आमाल बिल्ड होंगे। तो हमने तो पूरी उल्टी गंगा बहाई हुई है ना, उल्टी गंगा बहाना समझते हैं ना, हमने तो आमाल से शुरू किया है, ठीक है ना, कि हम जो है वो बगैर ईमान, बगैर एतमाद, बगैर सोहबत, हम सिर्फ आमाल की फिक्र कर रहे हैं, वो भी कौन लोग, जो दीनदार कहलाते हैं, जो दीनदार कराते हैं वो आमाल की फिक्र कर रहे हैं, राइट, और जो दीनदारी नहीं है उनको तो आमाल की भी फिक्र नहीं है, सही है ना। तो उल्टी गंगा बहाने से फिर क्या होगा भाई, राइट, तो जो तरीका है ना صحابہ کرام کا طریقہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا، ہمیں تو اس طریقے کے مطابق چلنا ہے نا، اس راستے پہ چلیں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی، پھر جو ہے نا وہ ہمارا دین پھر پختہ ہوگا، پھر وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ثابت قدمی آئے گی، پھر اس کے اندر استقامت آئے گی، پھر وہ فتنہ دجال کا مقابلہ کر سکے گا، پھر فتنہ دجال کا مقابلہ کر سکے گا. ایسے نہیں جس طرح سے کہ ہمارا جی ایروژن والا دین ایروڈ ہو جاتا ہے پورا کا پورا، ہمارا جو فاؤنڈیشنز ہیں پانی پر آ گئے ہمارے فاؤنڈیشنز کے اندر رائٹ، تو وہ کھاتا رہتا ہے نمک کی طریقے سے نا، وہ فاؤنڈیشن کو کھاتا رہتا ہے اور بالآخر جو ہے وہ عمارت جو ہے وہ اپنے ہی فاؤنڈیشن کے اوپر ہی گر جاتی ہے جا کر کے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا علماء پر اعتماد والی بات. اب آگے فرماتے ہیں دوسرا اعتراض کہ جی اگر یہ رسول ہوتے تو عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے نہیں بلکہ فرشتوں کی طرح کھانے پینے کی ضروریات سے مستغنی اور الگ ہوتے. اب یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ جو ہے نا یہ علماء کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، یہ اعتراضات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ بھائی ہم کیوں ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، یہ اعتراضات جو ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں، ان کی بھی کوئی سورس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سورس کہاں سے یہ جنریٹ ہوتے ہیں یہ اعتراضات. ٹھیک ہے، یہ اعتراضات جو ہیں یہ ہمارے دشمن کی طرف سے جنریٹ ہوتے ہیں. ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان. ٹھیک ہے، شیطان نہیں چاہتا کہ ہم مضبوط ایمان والے بنیں، شیطان نہیں چاہتا کہ ان کے عمل ایسے مضبوط ہوں کہ ان اعمال کو یہ سنبھال کر کے آخرت کی زندگی تک بھی پہنچا سکیں، وہاں جا کر کے پھر ان کو جنت کے اندر بڑے بڑے مقامات ملے، وہ نہیں چاہتا کہ ایسے اعمال کریں یہ لوگ. تو اس وجہ سے نا یہ ایمان بننے نہیں دیتا، ایمان بننے نہیں دیتے دینے کے لیے یہ اعتماد کو ضرب لگاتا ہے کہ اعتماد نہیں آئے ان کے اوپر. ٹھیک ہے نا، یعنی علماء پر یہ لوگ اعتماد نہیں کریں، تو اعتماد نہیں کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، پھر یہ ایک تو ان جڑنے سے روکتا ہے، کسی نہ کسی بہانے میں لگاتا ہے، کرکٹ میں لگاتا ہے، کرکٹ میں لگو یہ بہت اچھا گیم ہے، اس کو تو سید انور صاحب بھی کھیلا کرتے تھے اور انضمام الحق صاحب بھی کھیلا کرتے تھے، تو تم کیوں نہیں کھیل سکتے ہو، کتنے دیندار بن گئے تھے، کتنے تبدیلی جماعت کا کام کرنے والے پھر بھی کرکٹ کھیلتے تھے، تو تم کیوں نہیں کھیل سکتے ہو بھائی، یہ تو بڑا دینداروں کا گیم ہو گیا ہے اب تو یہ رائٹ. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، کسی کو بلیئرڈ میں لگاتا ہے، کسی کو جو ہے وہ ٹاک شوز میں لگاتا ہے، کسی کو کسی کام کے اندر لگاتا ہے، تو ایک تو جڑنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے، شہوات میں لگاتا ہے، اس کو کہتے ہیں شہوات میں لگانا، کھیلوں کودوں اور کھیل کود اور موسیقی اور ان چیزوں میں لگاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جن لوگوں کو لوڈو میں، لوڈو جو ہے وہ تو آج کل کی جو لاک ڈاؤن کے اندر وہ بچوں کو کھیلنے دینا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ دوسرا فتویٰ والا مسئلہ، وہ میں نہیں اس کی بات کر رہا کہ وہ اس کے اندر ڈائس ہوتا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے وغیرہ، لیکن اس قسم کے بورڈ گیم جو ہے نا وہ بچوں کو کھلانے چاہیے. اینی ویز، تو جڑنے نہیں دیتا شہوات کے ذریعے سے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ تھوڑا سا جڑ رہے ہیں، تھوڑا سا قریب آ رہے ہیں، تو اب شبہات پیدا کرتا ہے، شبہات کہ یہ لوگ تو صحیح لوگ نہیں ہیں، یہ غلط ہیں، شبہات ڈالتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ شبہات جو ہیں وہ شیطان پھر ان مشرکین کے دل میں بھی ڈالتا تھا کہ اگر یہ رسول ہوتے تو عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے نہیں بلکہ فرشتوں کی طرح کھانے پینے کی ضروریات سے مستغنی اور الگ ہوتے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کم از کم ان کے پاس اللہ کی طرف سے اتنا خزانہ یا باغات ہوتے کہ ان کو اپنے معاش کی فکر نہ کرنی پڑتی، بازاروں میں چلنا پھرنا نہ پڑتا. اس کے علاوہ ان کا اللہ کی طرف سے رسول ہونا ہم کیسے مان لیں کہ اول تو یہ فرشتے نہیں ہیں، دوسرے کوئی فرشتہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہتا جو ان کے ساتھ ان کے کلام کی تصدیق کیا کرتا، اس لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے جس سے ان کا نعوذ باللہ دماغ چل گیا ہے اور یہ ایسی بے سر و پا باتیں کہتے ہیں. مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یہ بے حیائی کی وجہ سے آتا ہے، اللہ کا عذاب بے حیائی کی وجہ سے آتا ہے، بے سروپا باتیں. بے حیائی کا کرونا وائرس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کرونا وائرس جو ہے یہ تو سوشل ڈسٹینسنگ نہ کرنے کی وجہ سے آتا ہے نا، یہ تو جو ہے وہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگتا ہے اور اس کے تو یہ سمپٹمز ہوتے ہیں اور اس کے اندر تو یہ جو ہے وہ پھر اس طریقے سے بندہ جو ہے وہ مر جاتا ہے، تو یہ اللہ کا عذاب کیسے ہو گیا؟ یہ تو مین میڈ قسم کی چیز ہے. کہتے ہیں کہ جی کسی نے اس ملک نے بنایا اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے، اس ملک نے بنایا اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے، تو اس کے اندر اللہ کا عذاب کہاں سے آ گیا؟ یہ تو مین میڈ ہے. تو جو مولوی لوگ جو ہیں وہ اللہ کا عذاب کی جو ہے وہ رٹ लगाए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि बेहयाई छोड़ दो, यही बातें राइट 21वीं सदी वाली बातें कि इन पर किसी ने जादू कर दिया है जिससे इनका दिमाग चल गया है, इन मौलवी साहब का दिमाग चल गया है नाउज बिल्ला, और ये ऐसी बेसरोपा बातें कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि पेंडेमिक जो है वो कैसे फैलता है, इनको पता ही नहीं है ये सारी बातें, ठीक है। और ये औरतों को पर्दा करने के लिए कह रहे हैं कि पर्दा करोगे ना तब ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा, बेसरोपा बातें कहते हैं राइट। इसका इजमाली जवाब तो ये इस आयत में दे दिया गया है कि यानी इजमाली जवाब बड़ा हाई लेवल जवाब अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर दिया है, ठीक है, कंप्लीट तफसीली जवाब नहीं है। वैसे भी कुरान जो है वो इजमाली किताब है, इसमें हर चीज का तफसीली जवाब वैसे भी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे इजमाली जवाब क्या दिया गया, उन्जुर कैफा ज़रबुल अकल इमसाला, कि जरा देखिए तो सही कि ये आपके ऊपर कैसी मिसालें चिस्पा कर रहे हैं, फज़ल्लु फला तस्ततीउन सबीला, बस ये लोग गुमराह हो गए हैं और इनको रास्ता नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि ये लोग जो है ना जो मीडिया वाले हैं ये तो खुशबू मुसन्नदा हैं, ये तो खुद जो है वो कुफर का शिकार हो चुके हैं, अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं लेकिन ये अकायद के कुफर का शिकार हो चुके हैं, और ये तो पेड सर्वेंट्स होते हैं किसी और के, वहां से इनको पेमेंट मिलती है, ये अपना चैनल चलाते हैं और ऊपर से दिखाते ही हैं कि जी एडवर्टिजमेंट के जरिए से हमारा चैनल चलता है, लेकिन असल में ये तो पीछे की सपोर्ट की वजह से चैनल चला रहे होते हैं। खुशबू मुसन्नदा, ये टेक लगा के खड़े हुए उनके ऊपर, जैसे एक लकड़ी टेक लगा के खड़ी होती है ना किसी चीज के ऊपर, और अगर टेक पीछे पीछे से हटा दें तो वो लकड़ी भी जो है वो गिर जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो इनका ये मामला है। तो ये लोग जो है ना फिर उलमा मसाजिद तबलीगी जमात दीन का हर काम ये उसके खिलाफ है। अगर इनको ये भी एक हेडिंग लगानी होती है ना कि अब कितने लोग जो है वो वायरस के शिकार हो गए, तो ये हेडिंग किसके साथ लगाते हैं, पीछे मस्जिद का बैकग्राउंड लगाते हैं कि देखो मस्जिद के अंदर जमातें हो रही हैं ना तो उसकी वजह से अमवात बढ़ गई हैं, पीछे मस्जिद की तस्वीर लगाते हैं। क्या मतलब है ये, क्यों मस्जिद की तस्वीर लगा रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं बादियो नजर राइट बैक ऑफ द माइंड में ये डाल रहे हैं कि देखो अमवात के बढ़ने का ताल्लुक जो है वो मस्जिदों में जमातों के साथ है जो कि इन मौलवियों ने करवानी शुरू कर दी है। ये तस्वीर नहीं लगाते कि बैंकों के बाहर जो है वो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, सब्जी मंडी के अंदर जो है वो लोगों का जो है वो जमघट्टा इकट्ठा हुआ हुआ है, और हर जगह गवर्नमेंट की अपनी मीटिंग्स जो है उनके अंदर लोग जो है वो चिपक करके सारे के सारे खड़े हुए हैं, वो तस्वीर नहीं लगाते, बल्कि मस्जिद के अंदर जो मजबूरन उलमा ने 6 फिट फासले के साथ जमात की नमाज करनी शुरू करी है उसकी तस्वीर लगाते हैं। क्यों ना लगाते हैं वाली तस्वीर, बिल्कुल ये गुमराह हो चुके हैं, इनको इनको कॉमन सेंस जो है ना ये इनसे लूज हो चुका है, या ये कि ये समझते हैं कि सारी दुनिया से भी कॉमन सेंस खत्म हो गया राइट। तो उलमा के ऊपर जो ये एतराज लगाते हैं, जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ये एतराज लगाया था और आज उलमा के ऊपर यही वाला एतराज लगाते हैं, तो इसका जवाब क्या है, ठीक है, इन एतराजात का जब तक जवाब नहीं मिलेगा तो हमारे दिलों के अंदर भी शैतान जो है वो वसवसे डालता रहेगा, मुस्तकिलन वसवसे चलते रहेंगे हमारे दिलों में भी, और हम भी जो है ना वो फिर यानी इन इनसे बच करके जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो है वो ऐसा ना हो कि शैतान अपने इन वसवसों में कामयाब हो जाए और हमारे दिल में भी बदगुमानी पैदा करे, हमें भी जो है वो बदजन कर दे अपने उलमा से, ठीक है, और हमें भी उसी सफ में ले जा करके खड़ा कर दे कि जिस सफ के अंदर ये मुशरिकीन मुनकरीन ये खड़े हुआ करते हैं। तो इस वजह से इन एतराजात का समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके ऊपर बात करने से पहले आप लोगों ने जो यहाँ लिखा है उसको मैं देखता हूँ कि एक मिनट, तफक्कुर करने के साथ क्या सवाल करना भी जरूरी है कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए। जी, अब आपने जो क्वेश्चन पूछा था तो इसका जवाब इंशाल्लाह आगे आ रहा है कि कंफ्यूजन्स को अवॉइड करना, कंफ्यूजन्स को रिमूव करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सवाल करने की जरूरत पड़ जाए तो सवाल करना जरूरी है, ठीक है, लेकिन ऐसे सवाल को एतराजी सवाल नहीं कहेंगे, ऐसे एक सवाल को तालिब इल्माना सवाल कहेंगे। और नीयत भी सवाल करने के अंदर यही होनी चाहिए कि मेरे अंदर से ये कन्फ्यूजन रिमूव हो, राइट, ताकि शैतान जो है वो मुझे बदगुमान ना कर दे। इस नीयत के साथ जो है वो सवाल करेंगे तो ये तालिब इल्माना सवाल होगा, और ऐसे सवाल को जो है वो हमारी दीन में इंकरेज किया जाता है। हाउ टू बिल्ड एतमाद, आई मीन द वे टू अटेन इट। तो उम्मीद है कि इसका जवाब आपके समझ में आया होगा कि इसके लिए जो है वो सोहबत, और बल्कि ऊपर हो चुका था फिर आपने ये सवाल जो किया है तो उसकी क्या वजह बनती है। बहरहाल जुड़ने से और सोहबत से जो है वो ये एतमाद हासिल होता है। अब समझ में आ रही है बात, सोशल डिस्टेंसिंग से और क्या क्या फायदे हो रहे हैं, अब आप जुड़ भी नहीं सकते, है ना। तो चले जब तक ये ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल है, व्हाट्सएप का ऑप्शन जब तक अवेलेबल है, तो उस वक्त तक तो कम से कम जुड़ने की कोशिश करें ना, ठीक है। अब वो वाला जुड़ना जो है वो तो हो नहीं सकता, अब क्या करें। बहरहाल जो इखलास वाला होगा वो अभी भी जो है ना वो जुड़ करके और अल्लाह ताला की मदद के साथ अभी भी उसको एतमाद हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए क्योंकि ये सारी चीज़ें जो अल्लाह की तरफ से होती हैं तो अल्लाह ताला बंदे के इखलास को देखते हैं, वसाइल जो है ना फिर उस वक्त मैटर नहीं करते, ठीक है, कि भाई अब तो जा कर के मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, अब तो जो है वो मिलना मुश्किल हो गया, तो अब कैसे एतमाद हासिल होगा। नहीं, ये रूहानी चीज़ है, आप अपना इखलास बनाएं और अल्लाह ताला से दुआ करें और जो आपके बस में है वो करें, तो अल्लाह ताला आपको ये एतमाद की दौलत भी अता फरमा देंगे, ठीक है। तो मायूसी की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह का अजाब इंसान के थ्रू भी आ सकता है कि नहीं, क्या मतलब है आपका, है? क्या इंसान जो है वो अल्लाह की मर्जी के बगैर काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत सादा सा एक जवाब होता है कि बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह का अजाब आया कि नहीं आया, आए ना, ठीक है। इसका इनकार कर सकते हैं कि बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह के अजाब नहीं आए, आए, राइट। तो कितनी दफ़ा बनी इसराइल को अल्लाह ताला का जो अजाब आया, सूरह बनी इसराइल को खोल करके ही देख लें, सूरह बनी इसराइल, सूरह इसरा वल मेराज भी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर बिल्कुल इब्तदाई ही में बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह के अजाब का जिक्र है। वो अल्लाह का अजाब किस शक्ल में आया था, बख्त नसर, राइट। और जो दूसरे बादशाह थे जिन बादशाहों ने इनके ऊपर हमला करके इनको ताख्त व ताराज किया था, इनको लाखों की तादाद में कत्ल किया था और इनके सारे जो है वो अमवाल लूट करके ले गए थे और गुलाम बना करके बाकियों को ले गए थे, तो ये मैन मेड अजाब था कोई, क्योंकि ये तो बंदे ने इनके इनकी पिटाई करी थी, है कोई फरिश्ते ने आकर के चिंगाड़ तो नहीं मारी थी बनी इसराइल के ऊपर, ठीक है। तो अल्लाह ताला का अजाब जो है ना वो इंसानों के हाथों भी आता है, ठीक है ना। अल्लाह ताला ना मानने वालों को दूसरे इंसानों का महकूम बना देते हैं, ये अल्लाह का अजाब होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि किसी को ऐसा मुसल्लत कर दिया इंसानों के ऊपर कि अब जो है ना वो इंसानों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, राइट, इंसानों की सेहत से खेल रहे हैं, इंसानों की जो है वो नफ्सियात से खेल रहे हैं, राइट। फियर, खौफ, लोगों को ऐसे ऐसे मैसेजेस दे रहे हैं कि जिन मैसेजेस को सुन करके बंदे जो है ना वो टेंशन से ही मर जाएं, राइट, टेंशन से मर जा रहे हैं लोग, हैं या उनकी जिंदगी जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस, आपका क्या ख्याल है, घर में सारे के सारे अल्लाह के वली बैठे हुए हैं अभी और घरों के अंदर बहुत अच्छे माहौल चल रहे हैं, बहुत माशाल्लाह मजा आ रहा है घरों के अंदर लोगों को, जी नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है क्योंकि हम नफ्सियाती तौर पे जो है ना वो बहुत बुरे इंसान हो चुके हैं। अब जो हमें घरों के अंदर बंद कर दिया गया है ना, तो हम एक दूसरे के लिए रहमत नहीं बन रहे हैं बल्कि मजीद जहमत बन रहे हैं। अब तो मुस्तकिल 24 घंटे शक्ल देखनी पड़ रही है एक दूसरे की, तो अब तो मार पिटाई दंगा फसाद बढ़ गया है, ठीक है। तो ये सब जो है ना ये सब अल्लाह का अजाब है, ठीक है। तो ये अल्लाह का अजाब अल्लाह ताला जो है वो कभी फरिश्ते के वास्ते से भेजते हैं, कभी अबाबील के वास्ते से भेजते हैं, कभी जो है वो इंसानों के हवाले से भेजते हैं, किसी चीज को भी अल्लाह ताला इस्तेमाल करके ना मानने वालों के ऊपर अपनी सजा कायम करते हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ क्या लिखा, तो क्या अब सब लोगों से जुड़कर चेक किया जाए कि कौन सही है? हाँ, ऐसे ही करें कि आपके जो बच्चा जब बीमार हो जाए ना, तो आप शहर के अंदर जितने डॉक्टर्स हैं ना, सारे डॉक्टर से जाकर के पहले वेरीफाई करें कि कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद फिर अपने बच्चे का इलाज करवाइएगा, ठीक है। तो अब सब लोगों से जुड़ करके फिर अपने बच्चे के इलाज के लिए डॉक्टर पसंद कीजिएगा कि किसके पास अपने बच्चे का इलाज करवाना चाहिए। जाहिर है आप ऐसा नहीं कर सकती, ना आप करेंगी। बिल्कुल इसी तरीके से उलमा का मामला भी, ठीक है, कि उलमा के अंदर भी जो है ना वो आप कोई गालिब ने साहब जैसे पहले भी जवाब दिया था कि इसके अंदर भी जो है वो रिकमेंडेशन
वर्ड ऑफ माउथ, अपने ट्रस्टवर्दी लोगों की रिकमेंडेशन के ऊपर आगे बढ़ते हैं. यू कैन नॉट गो एंड चेक ईच एंड एवरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन द कंट्री, राइट, इन द सिटी. हर डॉक्टर को आप चेकआउट नहीं कर सकते इस तरीके से, ठीक है? तो जो आपके सामने अवेलेबल होते हैं ना, आपको उनके साथ जुड़ना होता है और आपको जुड़ करके जो है वो ये चीज आपको पता लग जाती है. और जिस तरीके से अपने बच्चे की फिजिकल बीमारी के अंदर इस सारी सारी एफर्ट जो डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर क्लिनिक को चेक करना है, जुड़ना है, फिर वहां से इलाज करवाना है वगैरह, सबके पीछे जो है वो अल्लाह ताला के साथ एक दुआ का सिलसिला चल रहा होता है. सारी एफर्ट्स के साथ साथ एक ईमान वाले की दुआ चल रही होती है अल्लाह ताला के साथ. बिल्कुल इसी तरीके से उलमा के साथ जुड़ने की जो एफर्ट हो रही होती है, जो ट्रस्ट करने की जो एफर्ट हो रही होती है, चेकआउट करने की एफर्ट हो रही होती है, उसके अंदर पीछे जो है वो अल्लाह ताला के साथ एक दुआ का बैकग्राउंड में प्रोसेस मुस्तकिल चल रहा होता है, ठीक है? तो अल्लाह ताला फिर उस बंदे के इखलास, उसकी दुआ के मुताबिक जो है ना, फिर उसको हाथ पकड़ करके सही जगह पर पहुंचा देते हैं. इतना तो कम से कम बेसिक फॉर्म ऑफ ट्रस्ट एक मोमिन का होना चाहिए ना, वो लजीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना वाली आयत के ऊपर, ठीक है? जब इंसान अपनी लिमिट्स को जो अल्लाह ताला ने लगाई हैं उनसे निकल जाए तो अल्लाह का अजाब आता है. जी, यही मामला फैमिलीज में भी है, किसी पर सास मुसल्लत है, किसी पर बहू मुसल्लत है. बिल्कुल बिल्कुल, 100% अल्लाह ताला मुसल्लत करते हैं, तो ये मैन मेड अजाब नहीं होते, ये अल्लाह ही के अजाब होते हैं. सास को तो खाली इस्तेमाल किया जा रहा होता है उसके लिए, या बहू को इस्तेमाल किया जा रहा होता है उसके लिए. और इसके अलावा खैर और भी इसके अंदर तफसीलात हैं कि कभी जो है वो आजमाइश की शक्ल भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना हमारे अमाल की वजह से ये अजाब ही की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं. दैट मीन्स अहले हदीस हजरात जो तकलीद नहीं करते और उलमा को बाईपास करते हैं, तो क्या उनका हशर इस आयत के मुताबिक होगा? अल्लाह ना करे उनका हशर इस आयत के मुताबिक हो. वो असल में जो है ना वो उलमा को बाईपास नहीं करते हैं. आपको क्या नहीं पता कि अहले हदीस लोगों के उलमा होते हैं? अहले हदीस लोगों में क्या मुफ्ती हजरात नहीं होते हैं, उलमा नहीं होते हैं? तो होते हैं ना भाई, ये तो खाली कहने की बात है ना कि जो उलमा को बाईपास करते हैं, हकीकत में थोड़ी बाईपास कर रहे होते हैं, वो तो एक आई वॉश टाइप की चीज़ होती है. तो नहीं, वो कोई उलमा को बाईपास नहीं कर रहे होते हैं. अल्लाह ताला उनकी जो भी गलतियों को ताइए उनको माफ़ फरमाए, जिस तरह हमारी गलतियों को ताइयों को माफ़ फरमाए. In case of my two siblings are following two different ulama and both are trustworthy to whom I follow, आप इस्तखारा कर लें इस मामले में. अगर दोनों के ऊपर आपको equal trust है तो ऐसे मामले के अंदर फिर इस्तखारा किया जाता है, ठीक है? या मशवरा किया जाता है इस्तखारे के साथ साथ, जो है वो मशवरा भी करना चाहिए ना कि जी मेरे, ठीक है दोनों बिल्कुल सही हैं, दोनों बिल्कुल trustworthy हैं, लेकिन दोनों doctors बिल्कुल कंफर्म है कि भाई सही हैं, मैल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, राइट, और सारी उनके डिग्रीज भी सही हैं और उनसे जो है लोगों को फ़ायदा भी होता है. तो अब आपको फिर ये भी तो देखना पड़ता है ना, खाली इस्तखारा भी नहीं करते ना, उसके बाद ये भी तो देखना होता है कि अच्छा मेरे मखसूस हालात में इन दो डॉक्टर्स में से कौन सा वाला जो है वो ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा मेरे लिए, राइट? किसके साथ जो है वो मैं एक्चुअली अपना फॉलोअप भी कर सकूंगी, किसके पास जो है ना वो यानी ऐसी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी, उसका कैसा बैकग्राउंड है जिससे वो ही कैन एक्चुअली रिलेट टू माय प्रॉब्लम्स टू. तो ये सारी चीज़ें भी तो देखते हैं ना, दो अच्छे डॉक्टर में से अपने लिए किसी एक डॉक्टर को पसंद करने के लिए, ठीक है? तो ये बिल्कुल वही सारा सारा सिस्टम जो है ना, अल्लाह ताला ने फिजिकल हीलिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग, ये दो जो सिस्टम्स है ना, इन दोनों के दरमियान वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बना के रखी हुई है, ठीक है? एवरीथिंग दैट हैपेंस ओवर देयर आल्सो हैपेंस हियर विद जस्ट अ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है? तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करना शुरू हो जाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा. तो ये जो उलमा हैं इनके ऊपर फिर एतराज़ क्या करते हैं? वही एतराज़ जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर करते थे कि भाई वाई ही इज़ नॉट परफेक्ट. ये फरिश्ता क्या है, फरिश्ते का कॉन्सेप्ट, ठीक है? कि भाई ये रसूल जो है ना, ये फरिश्ते क्यों नहीं है, ठीक है? फरिश्ते की क्या डेफिनेशन है? एंजल्स, फरिश्ते वो होते हैं कि जिनके अंदर गलती करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, राइट? वो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर ही नहीं सकते. तो इन अदर वर्ड्स, मखलूक में से खालिक तो परफेक्ट है ना, ठीक है, लेकिन मखलूक में से अगर आप परफेक्शन देखना चाहें, ठीक है ना, नो एरर, तो वो कहां देखेंगे? वो फरिश्ते में देखेंगे, ठीक है? तो जब ये कहते थे ना कि जी रसूल जो है वो फरिश्ता क्यों नहीं है, तो फरिश्ते का मतलब होने का क्या कि एक तो ये कि किसी किस्म की कोई फॉल्ट, किसी किस्म की कोई कमी इनके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इनको फरिश्तों के जैसा होना चाहिए. ये तो मोहताज नजर आते हैं, मोहताज यानी इनको भूख लगती है तो ये खाने के मोहताज हैं, है ना, और इनके घर घर की और जिम्मेदारियां हैं कि जिनके अंदर इनको कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है अपने घर वालों के लिए, तो ये बाजारों के भी मोहताज हैं, तो इनके अंदर तो मोहताज ही है। फरिश्ते तो मोहताज नहीं होते, ना तो वो खाने पीने के मोहताज होते हैं, ना उनको किसी और किस्म की चीजों की एहतियाज होती है, ठीक है। तो इनके अंदर एहतियाज क्यों है, इनको तो परफेक्ट होना चाहिए, एज परफेक्ट एज ए क्रिएशन कैन बी, इनको तो वैसा होना चाहिए था, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स के ये लोग जो है परफेक्शन डिमांड करते थे नबी अलैहि सलाम से, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि आज के लोग जो हैं वो उलमा से परफेक्शन डिमांड करते हैं, ठीक है, कि उलमा से किसी किस्म की ना तो एक्चुअल गलती होनी चाहिए और ना परसीव्ड गलती होनी चाहिए। एक्चुअल गलती तो वो ये होती है ना कि भाई बंदा वाकई कोई मिसस्टेप कर जाए, उससे गलती हो गई, गलत स्टेप ले लिया उसने, कोई गलत काम कर दिया, इसको कहते हैं एक्चुअल गलती। और एक होती है परसीव्ड गलती, यानी उसने कोई गलती करी नहीं है लेकिन देखने वालों को वो गलती लग रही है, ठीक है। तो ना तो उनके अंदर एक्चुअल गलती होनी चाहिए ना परसीव्ड गलती होनी चाहिए, हालांकि ये जो परफेक्शन है ये अल्लाह ताला ने किसी इंसान के लिए नहीं रखी है। आज के 21वीं सदी के उलमा तो छोड़ दें, ये तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल के लिए नहीं रखी थी, राइट। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खाने पीने का मोहताज बनाया, बीवी के साथ ताल्लुकात का मोहताज बनाया, राइट, जिसका कि यहाँ पे इस आयत के अंदर जिक्र है। और नबी अलैहिस्सलाम सलाम के मुबारक तरीन जो बेहतरीन इंसान थे उनसे अल्लाह ताला ने फिर इज्तिहादी गलतियां, गुनाह वाली गलतियां नहीं, इज्तिहादी गलतियां, वो उनसे सरजद भी हुई, और सिर्फ ये कि सरजद नहीं हुई बल्कि अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा अपने कुरान अज़ीमुश्शान के अंदर करके भी छोड़ा, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो अल्लाह के नबी अल्लाह के महबूब की इन इज्तिहादी गलतियों से मुत्तला भी हों। सूरह अबसा व तवल्ला उठा करके देख लें और बहुत सारे मुकामात कुरान के अंदर हैं, ठीक है। तो नबी की परफेक्शन, जरा आप बता दें कि नबी की जो परफेक्शन है तो परफेक्शन, लेकिन किस एस्पेक्ट में परफेक्शन है, राइट। ये खाने पीने वाली परफेक्शन नहीं क्योंकि उसमें तो मोहताज हैं, बाजार की चीजों की परफेक्शन नहीं क्योंकि उसमें तो मोहताज हैं। नबी अलैहिस्सलाम सलाम में परफेक्शन थी लेकिन उस परफेक्शन को क्या कहते हैं, ये आपके के लिए क्विज है। नबी अलैहिस्सलाम सलाम की परफेक्शन उसको क्या कहते हैं, जी नहीं, एक जवाब सही है, बंदगी, अब्दियत के अंदर परफेक्शन, राइट, अब्दियत में, अब्दियत वाली परफेक्शन, मासूमियत वगैरह ये सब जवाब सही नहीं है, अब्दियत वाली परफेक्शन, ठीक है ना। और अब्दियत वाली परफेक्शन क्या थी कि अपनी ख्वाहिशात अल्लाह की ख्वाहिशात में गुम कर दी, लेकिन गलती कभी हो गई तो उस गलती के ऊपर इसरार करने की बजाय निदामत, अल्लाह ताला से माफी। दिस ऑल टुगेदर इज कॉल्ड अब्दियत, ऑल ऑफ दिस टुगेदर इज कॉल्ड अब्दियत। ये नहीं कि कभी कोई गलती नहीं करी, कभी भी अतात के अंदर कोई कमी बेशी नहीं हुई, हुई नबी अलैहिस्सलाम से भी हुई कमी बेशी, गुनाह नहीं, राइट। देखिए जरा तफसीर को उठा करके, हुई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला की तरफ से रिमाइंडर आ गया, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया, फौरन रुजू कर लिया, फौरन उसके ऊपर यानी अपने तर्ज अमल को बदल लिया, ठीक है। तो ये परफेक्शन, इसको बंदगी वाली परफेक्शन कहते हैं। तो ये बंदगी वाली परफेक्शन जो है ना, ये उलमाए हक में होती है, ये उलमाए हक में भी होती है, यानी परफेक्शन नॉट इन द सेंस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेवल की परफेक्शन नहीं होती है, लेकिन बंदगी, राइट, ये उलमाए हक की पहचान होती है। अगर ये ये ना हो तो फिर वो उलमाए हक कहलाने के काबिल नहीं होते, अगर ये ना हो, ठीक है। तो इस वजह से ना ये यानी होता ना कि यानी आप जो है वो सोचना कि किसी डायरेक्शन में चाहिए था, सोच जो है वो किसी और डायरेक्शन में रहे, तो भाई दूसरे डायरेक्शन में सोचने से तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी ना, आप किसी और रास्ते के ऊपर चलना शुरू हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो कुफार है, ये नबी अलैहिस्सलाम को नबी मानने के लिए जो है वो किस डायरेक्शन में चल रहे थे, इनको खाने पीने की एहतियाजी होनी चाहिए, इनको बाजारों में जाने की एहतियाजी होनी चाहिए, इनके साथ जो है वो मलक फरिश्ता होना चाहिए, इनके अंदर जो है ना वो कोई सुपर फीट्स होनी चाहिए, राइट, कि इन ये मलक फरिश्ता इनके साथ होना चाहिए। वो ऐसे ही हो गया ना जैसे कि आजकल जो है वो हमने जो है वो तखयलाती जो है कैरेक्टर्स बनाए हुए। ठीक है, ये एक और जरा जिमनी बात है कि अपने बच्चों को ना चाहिए हमें कि हम इन जो कार्टून कॉमिक सुपर हीरोज है ना, कार्टून्स के और कॉमिक्स के सुपर हीरोज, इनसे बचा करके रखें। चाहे वो यानी सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, तो हर वो हो गया, और कौन कौन से मैन हैं, और राइट ये न जाने और किस किस्म के, वोल्ट्रैन और इस किस्म के फ्लैश, अच्छा ठीक है, ये जो कुछ मैकेनिकल हैं, कुछ जो है वो ह्यूमन शेप एंड फिगर के होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सुपर हीरोज जो है ना, इनको अपने बच्चों के दिमाग में घुसने नहीं दें। अगर घुस चुके हैं ना तो अब इनकी ब्रेन वॉशिंग शुरू करें, क्योंकि ये सुपर हीरोज, ये परफेक्ट किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं, ये जो है ना फिर दिमाग के अंदर जो है ना एक तो खुदा को भी रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना, ये अजीब किस्म के यानी परफेक्शन किस्म के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ये खुदा को भी रिप्लेस कर सकते हैं आपके बच्चे के दिमाग से। और अगर खुदा को रिप्लेस नहीं भी कर पाए ना तो भी ये नेक इंसानों को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। आपका बच्चा जो है ना वो फिर यही क्वालिटीज देखा करेगा, किसी को बड़ा समझने के लिए, किसी को वर्थ फॉलोइंग समझने के लिए, वर्थ लविंग समझने के लिए, वो फिर यही किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहेगा उनके अंदर, जो कि इन सुपर हीरोज के अंदर होती हैं, ठीक है। तो बच्चों को समझाएं कि ये सबसे पहली बुराई इनके अंदर ये है कि ये झूठे हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट, दे डू नॉट एग्जिस्ट, दे आर वॉट, इफ कुन इफ तरा हो। यही बात जो कि काफिर रसूलों के ऊपर करते हैं, मुल्हिदीन उलमा के ऊपर करते हैं ना, इफ कुन इफ तरा हो, यही उनके ऊपर पलटें, यही उनके ऊपर पलटें कि ये सुपर हीरोज, ये कॉमिक कैरेक्टर्स, ये इफ कुन हैं, झूठ हैं, इफ तरा हो जो कि इन्होंने घड़े हुए हैं। बेटा बेटी, दीज थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट, राइट, और हमें इनकी तरफ नहीं देखना है, हमें तो अल्लाह की तरफ देखना है, हमें अल्लाह के नबी की तरफ देखना है, हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की तरफ देखना है। वो है सुपर हीरोज, क्रिएशन के अंदर हमारे सुपर हीरोज जो हैं अल्लाह के नबी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, और हमारे दौर में जो हमारे कोई बड़े हैं जिनको हम अपना बड़ा अपना शेख समझते हैं, वो हमारे सुपर हीरो हैं, राइट। ये झूठे मक्कार फरेबी, चाहे वो किसी भी शक्ल के हों, ये हमारे सुपर हीरोज नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा उलमा के जो ऊपर एतराजात होते हैं ना खाने पीने वगैरह के मुताल्लिक, तो इनके ऊपर भी बात करनी है, लेकिन इंशाल्लाह ये हम कल करेंगे। क्लास खत्म करने से पहले बस ये एक मैसेज पढ़ लेते हैं कि ऐसा इंडिया में हुआ, जब हम छोटे थे तो शक्तिमान था, अच्छा, मेनी चिल्ड्रन थॉट ही वुड कम टू सेव देम व्हेन दे विल जंप फ्रॉम द हाई राइज बिल्डिंग, ही नेवर केम एंड दे डाइड। अच्छा, शक्तिमान कोई था उनके, सुपर हीरो टाइप की चीज, तो बच्चों ने बिल्डिंग पर से छलांग लगा दी, वो शक्तिमान साहब जो है वो आए नहीं उनको बचाने के लिए, तो वो मर गए। अच्छा, लेटर ही गेव क्लेरिफिकेशन, आई एम ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। अच्छा, जब मर गए सारे इतने सारे बच्चे, तो फिर वो एंटरटेनमेंट के लिए समझाया कि अच्छा मैं तो खाली ऐसे ही मजाक कर रहा था जी। तो अपने जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को इस रास्ते पे चलाया था, तो फिर वो उनको बहुत, फिर ये एतराज होता कि वो तो परफेक्ट थे, हम कैसे फॉलो करें, हम तो फरिश्ता नहीं है। हाँ, तो जब बंदियत को आप परफेक्शन करार देंगे ना, कि रसूल की और ईमान वालों की परफेक्शन जो है वो बंदियत यानी अब्दियत है, बंदा बनना है, तो बंदा बनना तो हर बंदे کے لیے ممکن ہے، ہر انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور جب اس سے بتقاضائے بشریت گناہ ہو جائے، کیونکہ وہ انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ تو یہ تو ہر انسان کے لیے ممکن ہے اور بہت آسان ہے یہ والا کام، ٹھیک ہے؟ تو ابدیت کی پرفیکشن حاصل کرنا نا، یہ ایک اچیویبل ٹارگیٹ ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اچیویبل ٹارگیٹ رکھے ہیں نا، ان اچیویبل ٹارگیٹس تو اللہ تعالیٰ نے رکھے بھی نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ ساری باتیں ان لوگوں کی جو تھیں نا، یہ شیطان کی طرف سے تھیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا نفس جو ہے نا وہ چاہتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کسی طریقے سے یعنی برا بنائے لوگوں کی نظروں میں، تاکہ ان کی جو چودراہٹ ہے، ان کی حکومت جو ہے نا وہ دنیا کے اوپر قائم رہے۔ تو اس وجہ سے ساری الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے، بے سروبا باتیں اصل میں تو یہی لوگ کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔